एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बिजनेस लीडरशिप की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, लेकिन वो चमक दमक वाली कहानियों से थोड़ा हटकर।
हाँ, आज बात होगी उन मुश्किल पलों की।
हाँ, वो मुश्किल फैसले, वो अंदर की कश्मकश और कभी कभी वो अकेलापन भी, जिसका सामना लीडर्स को करना पड़ता है, खासकर तब जब लगता है कि भाई सारे रास्ते बंद हैं।
सही, जब हर चुनाव मुश्किल लगे।
बिल्कुल।
और इसी पर है बेन होरोविट्ज़ की 2014 में आई किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। इसका पूरा टाइटल है बिल्डिंग अ बिजनेस व्हेन देयर आर नो इजी आंसर्स।
मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कोई आसान ये कर लो वो कर लो वाली किताब नहीं है।
सिर्फ सक्सेस का फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि जब हालात एकदम खराब हों तो उनसे कैसे जूझा जाता है। वो क्रूर सच्चाई बयान करती है।
और सबसे अहम बात, बेन होरोविट्ज़ ये सब बातें कहीं पढ़कर नहीं बता रहे,
नहीं।
वो खुद इस सबसे गुजरे हैं।
हाँ, वो सिलिकॉन वैली के दिग्गज माने जाते हैं, उद्यमी रहे, निवेशक है, लेखक है, और वो जो मशहूर वेंचर कैपिटल फर्म है ना, एंड्रीस होरोविट्ज या A16Z, उसके को फाउंडर है।
अच्छा, और पहले ऑप्सवेयर के सीईओ भी थे, जो पहले लाउड क्लाउड हुआ करती थी।
सही, तो आज उनकी आवाज, मतलब उनके विचार, मुश्किल हालात में जूझ रहे लीडर्स के लिए गाइड जैसे हैं। और इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी या मार्केट की उठापटक पर ही फोकस नहीं करती।
तो फिर किस पर करती है?
ये बात करती है उस मनोवैज्ञानिक बोझ की, उन फैसलों के वजन की, जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है, जहां लीडर को पता होता है कि उसके एक कदम से कितने लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा।
हाँ, ये बहुत भारी बात है।
होरोविट्ज़ उन्हीं पलों के बारे में लिखते हैं जब लगता है सब बिखर रहा है, लेकिन फिर भी आपको कमान संभालनी है।
सही कहा, और उनकी अपनी कहानी भी तो कमाल की है। एक संघर्ष करने वाले सीईओ से लेकर सिलिकॉन वैली के सबसे प्रभावशाली निवेशकों में से एक बनने तक का सफर।
हाँ, ये अपने आप में लीडरशिप, जुझारूपन और कुछ बड़ा करने की कीमत क्या होती है, इस पर एक सबक है।
और आज का जो माहौल है, इतना अनिश्चित, इतनी तेजी से बदलता हुआ, उसमें तो ये बातें शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं।
बिल्कुल, तो चलिए उनके सफर को, उनकी सोच को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं।
हाँ, शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने उनके सोचने के तरीके को, उनके नजरिए को शेप दिया? वैसे उनका जन्म लंदन में हुआ था, पर पले बढ़े बर्कली, कैलिफोर्निया में।
हाँ, और माहौल ऐसा था जहां विचारों का टकराव, बहसें आम थीं। उनके पिता डेविड होरोविट्ज़, वो खुद एक जाने माने लेखक है, और उनका अपना राजनीतिक सफर भी काफी नाटकीय रहा है।
अच्छा, किस तरह का?
वो पहले वामपंथी विचारों के थे, फिर धीरे धीरे रूढ़िवादी हो गए। तो बेन ने बचपन से ही ये देखा कि विचार बदल सकते हैं, और सबूतों के आधार पर अपनी राय बदलना, उसके लिए हिम्मत चाहिए।
ये तो दिलचस्प बात है।
और उन्होंने ये भी महसूस किया कि अपने विश्वासों पर टिके रहने की, या जो सही लगता है वो करने की, एक कीमत होती है। उनके पिता के राजनीतिक बदलाव का असर परिवार के सोशल सर्कल, मौकों, सब पर पड़ा।
तो ये शुरुआती सबक के सही काम करने की कीमत होती है, ये उनके बिजनेस में भी दिखा।
हाँ, बिल्कुल, उनके मुश्किल फैसलों में ये बात बार बार झलकती है।
उनकी पढ़ाई भी देखें तो टेक और बिजनेस का मेल है, UCLA से कंप्यूटर साइंस, फिर कोलंबिया से MBA।
बल्कि ये भी कि कंपनियां असल में इंसानों, उनके स्वभाव, बाजार के उतार चढ़ाव और विजन को हकीकत बनाने के मुश्किल खेल पर चलती हैं।
मतलब टेक्निकल समझ के साथ साथ इंसानी पहलू की भी गहरी समझ।
हाँ, बिल्कुल, एक तरह का विश्लेषण और मनोविज्ञान का मिश्रण। करियर की शुरुआत सिलिकॉन ग्राफिक्स, नेटस्केप, वहीं उनकी मुलाकात मार्क एंड्रीसन से हुई थी।
नेटस्केप, वो तो इंटरनेट क्रांति का शुरुआती दौर था, बड़ा रोमांचक समय रहा होगा।
बहुत। और फिर 1999 में मार्क एंड्रीसन के साथ मिलकर लाउड क्लाउड शुरू की। आइडिया बहुत बड़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग का, लेकिन शायद वक्त से थोड़ा पहले।
और किस्मत देखिए, कंपनी का IPO कब हुआ? ठीक .com बबल फटने से पहले।
हाँ, और बस यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे होरोविट्ज़ अपनी किताब में कहते हैं द स्ट्रगल,
संघर्ष।
हाँ, संघर्ष। .com क्रैश आया और रातों रात उनके ज्यादातर क्लाइंट्स गायब हो गए, दिवालियां हो गए या खर्च बंद कर दिया। ऊपर से कंपटीशन बढ़ रहा था, कंपनी के अंदर भी अपनी चुनौतियां थीं। एक वक्त तो ऐसा था कि कंपनी का बचना ही मुश्किल लग रहा था।
और यहाँ पर लीडरशिप का असली टेस्ट हुआ होगा, जब कोई बना बनाया रास्ता ना हो।
बिल्कुल, यही होरोविट्ज़ को बिना किसी रेडीमेड फॉर्मूले के अधूरी जानकारी और भयंकर दबाव में फैसले लेने पड़े।
और इसी संकट से वो बड़ा बदलाव भी आया, लाउड क्लाउड से ऑप्सवेयर बनने का।
हाँ, वो सिलिकन वैली के सबसे नाटकीय बदलावों में से एक माना जाता है। उन्हें मानना पड़ा कि भाई हमारा ओरिजिनल बिजनेस मॉडल फेल हो गया है।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने क्लाउड सर्विस वाला बिजनेस EDS को बेच दिया और पूरा फोकस सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर दिया, जो ऑप्सवेयर बना।
सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा, सैकड़ों कर्मचारियों को निकालना, कंपनी की पहचान ही बदल देना,
और बाकी बची टीम और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना। ये वो संघर्ष था जिसने असल में इस किताब को जन्म दिया।
ये वाकई कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन अंत अच्छा रहा है ना, ऑप्सवेयर सफल हुई।
हाँ बिल्कुल, 2007 में ऑप्सवेयर को HP ने खरीदा, और वो भी $1.6 बिलियन में।
वाह,
तो एक अध्याय खत्म हुआ। फिर उन्होंने मार्क एंड्रीसन के साथ मिलकर एंड्रीसन हॉरोविट्स यानी A16Z की नींव रखी,
जो आज दुनिया की टॉप VC फर्म्स में से एक है।
सही, और एक VC के तौर पर भी वो अपने उन्हीं कड़वे अनुभवों से सीखे सबक का इस्तेमाल करते हैं दूसरे उद्यमियों की मदद करने में। खासकर लीडरशिप के मानवीय पहलू और कंपनी कल्चर पर उनका बहुत जोर रहता है।
और फिर उन्होंने ये किताब लिखी, जो कोई आम सफलता की कहानी नहीं है।
नहीं, ये उन अंधेरे पलों के बारे में है जब सारी थ्योरी सारी सलाहें फेल हो जाती हैं, जब कोई आसान जवाब नहीं होता। ये उन सच्चाइयों का बयान है जो उन्होंने खुद जी है।
तो उनकी नजरिए को, उनके दर्शन को थोड़ा और समझे, लीडरशिप और बिजनेस बनाने को लेकर उनकी सोच का आधार क्या है?
देखिए, हॉरोविट्स का जो नजरिया है ना, वो बहुत यथार्थवादी है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। वो एंटरप्रेन्योरशिप की वो जो साफ सुथरी ग्लैमरस तस्वीर मीडिया दिखाता है ना।
हाँ, जैसे सब कुछ परफेक्ट चल रहा है।
हाँ, वो इसे सिरे से खारिज करते हैं।
तो फिर उनके मुख्य सिद्धांत क्या है?
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है संघर्ष को स्वीकारना, मतलब द स्ट्रगल को गले लगाना। उनका मानना है कि अगर आप कुछ भी बड़ा, कुछ भी सार्थक बनाने निकलेंगे,
हाँ,
तो आप लगातार ऐसी मुश्किलों से टकराएंगे जिनका कोई सीधा आसान हल नहीं होगा। ये प्रोसेस का हिस्सा है। हॉरोविट्ज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे तो शायद आप कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो संघर्ष से बचना चाहते हैं।
हाँ, लेकिन उनका पॉइंट है कि ये असफलता का संकेत नहीं है, ये तो रास्ते का हिस्सा है। दूसरा, संकट में नेतृत्व। उनका मानना है कि लीडरशिप की असली परीक्षा संकट में ही होती है।
जब कोई आसान रास्ता ना हो।
हाँ, जब हारने का खतरा बड़ा हो, जब हर विकल्प मुश्किल हो, यही वो पल हैं जो लीडर का असली चरित्र, उसकी काबिलियत सामने लाते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है कि आपको अधूरी जानकारी के साथ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं,
और फिर नतीजा चाहे जो भी हो, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है,
पूरी जिम्मेदारी। उनके लिए ये जो अस्पष्टता है, अनिश्चितता है, उससे निपटना ही सबसे कीमती बिजनेस स्किल है।
इसमें वो मानवीय पहलू भी जुड़ा है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो बिजनेस के फैसलों का, खासकर मुश्किल फैसलों का, जैसे कर्मचारियों को निकालना, उनका इंसानों पर क्या असर होता है, से बहुत गहराई से समझते हैं। वो इस तनाव को मानते हैं, बिजनेस की जरूरत और इंसानी असर के बीच का तनाव, उसे अनदेखा नहीं करते।
और उन्हें क्या चीज प्रेरित करती थी? सिर्फ पैसा?
नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी का गहरा एहसास जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। कर्मचारी, निवेशक, ग्राहक, साथ ही लीडरशिप की प्रकृति को समझने की एक बौद्धिक जिज्ञासा भी थी, और कुछ ऐसा बनाने की इच्छा जो चले, जो टिके।
आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, ऑपरेशनल स्टोइसिज्म, मुश्किल हालात से निपटने का उनका तरीका, वो क्या है?
हाँ, ऑपरेशनल स्टोइसिज्म, इसे आप कह सकते हैं व्यवहारिक वैराग्य या तटस्थता। मतलब मुश्किल हालात को स्वीकार करना, बिना ज्यादा भावुक हुए, बिना हाय तौबा मचाए।
अच्छा।
और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाना जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। उन चीजों की चिंता में नहीं घुलना जो आपके बस में नहीं है। दिमाग शांत रखना, टीम और निवेशकों से ईमानदार रहना, और बस उन कामों पर फोकस करना जो किए जा सकते हैं।
ये तो जिंदगी में भी बहुत काम की बात है।
बिल्कुल।
उन्होंने एक और बड़ा दिलचस्प फर्क बताया है, पीक टाइम CEO बनाम वॉर टाइम CEO, शांति काल का लीडर और युद्ध काल का लीडर, ये क्या है?
ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। पीक टाइम यानी शांति का समय, जब कंपनी अच्छा कर रही है, बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तब फोकस होता है नई चीजें बनाने पर, कल्चर को बेहतर करने पर। ऐसे में पीक टाइम सीईओ सबको साथ लेकर चलता है, सहमति बनाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है।
ठीक है, और वॉर टाइम?
वॉर टाइम यानी युद्ध का समय, जब कंपनी के अस्तित्व पर ही खतरा हो। जैसे कोई बड़ा संकट आ जाए, कोई बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर आ जाए या बाजार ही बैठ जाए, तब वॉर टाइम सीईओ को मैदान में उतरना पड़ता है।
उसे क्या करना होता है?
उसे तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं, निर्णायक फैसले, और अक्सर अकेले ही, क्योंकि सोचने का, बहस करने का वक्त नहीं होता। हॉरोविट्स कहते हैं कि एक महान सीईओ को ये पहचानना होता है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, पीक टाइम है या वॉर टाइम, और उसी हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल बदलनी पड़ती है।
मतलब एक ही तरीका हमेशा काम नहीं करेगा, आपको हालात के हिसाब से बदलना होगा।
हाँ बिल्कुल, अक्सर लीडर एक ही स्टाइल में फंस जाते हैं चाहे हालात कुछ भी हों। हॉरोविट्स इसीलिए इस पर इतना जोर देते हैं।
उनके अपने सफर में तो कई वॉर टाइम मोड़ आए होंगे, क्या आप उनमें से कुछ अहम मोड़ों के बारे में बता सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, उनके करियर में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने न सिर्फ उनकी कंपनी बल्कि उन्हें खुद एक लीडर के तौर पर बदल दिया। तीन खास तौर पर बहुत अहम थे।
तो पहला कौन सा था?
पहला था 2000-2001 का .com क्रैश, और उसके बाद जो ग्राहकों का पलायन हुआ।
हाँ, जिसके बारे में हमने बात की थी।
हाँ सोचिए, इंटरनेट बबल फूटा और लाउड क्लाउड के ज्यादातर ग्राहक, जो खुद नई नवेली .com कंपनियां थी, रातों रात या तो बंद हो गई या उन्होंने खर्च बिल्कुल कम कर दिए। कंपनी के सामने सीधा वजूद का संकट खड़ा हो गया।
इसने उन्हें एक लीडर के तौर पर कैसे बदला? इसका क्या सबक था? इसने हॉरोविट्स को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया कि बाहरी ताकतें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपके सबसे अच्छे प्लान को भी बर्बाद कर सकती हैं। उन्हें फौरन खर्च घटाने पड़े, बचे खुचे ग्राहकों पर पूरी जान लगानी पड़ी और पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी नए सिरे से सोचनी पड़ी। सबक ये था कि जिंदा रहने के लिए कभी कभी आपको अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं को भी छोड़ना पड़ता है। ये वॉर टाइम लीडरशिप का शायद पहला बड़ा इम्तिहान था उनके लिए। ये वाकई एक हार्ड थिंग रही होगी। और दूसरा बड़ा मोड़, वो कौन सा था?
वो था 2002 में, जब उन्हें लाउड क्लाउड का मुख्य सर्विस बिजनेस EDS को बेचना पड़ा और ऑप्सवेयर नाम से सिर्फ सॉफ्टवेयर पर फोकस करने का फैसला लेना पड़ा।
मतलब जिस आइडिया पर कंपनी बनी थी उसे ही बेचना पड़ा।
हाँ, सिर्फ $63.5 मिलियन में, ताकि सॉफ्टवेयर वाले हिस्से को बचाया जा सके। ये शायद उनके सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ा, कंपनी की पहचान ही बदल गई।
और बची हुई टीम और निवेशकों को इस नई दिशा पर यकीन दिलाना, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा।
बहुत ज्यादा। यहाँ हॉरोविट्स को ये मानना पड़ा कि उनका शुरुआती सपना, वो विजन, फेल हो गया है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी टीम की काबिलियत पर भरोसा भी रखना था। यहीं से उन्होंने शायद लीडरशिप के अकेलेपन को, उस मुश्किल फैसले की अंतिम जिम्मेदारी को सबसे ज्यादा महसूस किया होगा।
उस दबाव की कल्पना करना भी मुश्किल है। तीसरा मोड़ कौन सा था?
तीसरा मोड़ बाहर से नहीं, अंदर से आया। 2003-2004 के आसपास की बात है। ऑप्सवे तरक्की तो कर रहा था, लेकिन कंपनी के अंदर ही कुछ सीनियर अधिकारियों ने उनके लीडरशिप और कंपनी की दिशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।
अरे, ये तो और भी मुश्किल होता होगा जब अपनी ही टीम का विश्वास हिलने लगे।
हाँ, बाहरी संकट से निपटना एक बात है, पर ये एक तरह का व्यक्तिगत संकट था। इसने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को फिर से देखें। वो अपनी टीम से कैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, क्या सीखा इससे?
हल निकालने के उन्हें कुछ लोगों को हटाना भी पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया कम्युनिकेशन में। उन्होंने तय किया कि वो कंपनी की चुनौतियों और मौकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी रहेंगे। सबक ये था कि भाई, सबसे सफल लीडर को भी फीडबैक सुनने और जरूरत पड़ने पर खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये भी कि कंपनी का कल्चर और लीडर कितना प्रभावी है, ये चीजें आपस में बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं।
ये तीनों मोड वाकई दिखाते हैं कि हॉरोविट्स की बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, उन्होंने ये सब खुद जिया है, महसूस किया है।
बिल्कुल,
और उनके अनुभव हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी और लीडरशिप के मानवीय पहलुओं के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं।
हाँ, अगर हम मानवीय सबकों की बात करें तो पहला और सबसे जरूरी है, जैसा हमने कहा, कठिनाई को गले लगाना। वो संघर्ष किसी भी सार्थक काम का हिस्सा है, न कि असफलता का संकेत,
चाहे वो करियर हो, परिवार हो या कोई और लक्ष्य।
हाँ, मुश्किलें आएंगी ही, उन्हें स्वीकारना पहला कदम है। दूसरा, लीडरशिप की पहचान मुश्किल फैसलों से होती है। असली चरित्र संकट में ही पता चलता है, जब हर चुनाव की कोई ना कोई कीमत हो।
और ईमानदारी से बात करना, प्रामाणिक संवाद,
हाँ वो बहुत जरूरी है। मुश्किलों के बारे में ईमानदारी से बात करना बेशक सही सीमा में भरोसा तोड़ता नहीं बल्कि बनाता है, और फिर वो जिम्मेदारी वाली बात अंत में जवाबदेही लीडर की ही होती है, आप उसे टाल नहीं सकते।
लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी है कि जुझारूपन यानी रिजिलियंस सीखा जा सकता है।
हाँ ये बहुत अहम है, ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, ये एक स्किल है जिसे मेहनत और कोशिश से मजबूत किया जा सकता है, मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत।
आज के माहौल में आर्थिक अनिश्चितता, टेक्नोलॉजी का तेज बदलाव, ये सबक कितने प्रासंगिक हैं?
शायद पहले से भी ज्यादा। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अनिश्चितता इतनी ज्यादा है, ऐसे में हॉरोविट्स के सिद्धांत, अनिश्चितता को स्वीकारना, मुश्किल फैसले लेना, पारदर्शिता रखना, जुझारू बनना, ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो किसी भी तरह के लीडरशिप रोल में है,
चाहे वो एक छोटी टीम का लीडर हो या अपना कोई स्टार्टअप चला रहा हो या बस अपने करियर की चुनौतियों से निपट रहा हो।
हाँ ये सिद्धांत एक तरह से गाइड का काम कर सकते हैं।
उनकी वो जो बेबाक ईमानदारी है ना, वो भी उन्हें दूसरों से अलग करती है। वो रेमन नूडल वाली कहानी,
हाँ कितनी छोटी सी बात है पर कितना कुछ कह जाती है।
हाँ वो कहानी वाकई दिल को छूती है। जब लाउड क्लाउड बुरे दौर में थी, पैसों की बहुत तंगी थी,
हाँ
तो कई कर्मचारी दोपहर के खाने में सबसे सस्ते इंस्टेंट रेमन नूडल्स खाकर काम चला रहे थे,
सिर्फ इसलिए कि वो कंपनी के साथ खड़े रहना चाहते थे, हाँ इस उम्मीद में कि हालात सुधरेंगे। हॉरोविट्स लिखते हैं कि ये देखकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोझ कितना ज्यादा महसूस होता था। ये कहानी सिर्फ पैसों की तंगी नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं, आपके लिए क्या त्याग कर सकते हैं, और एक लीडर पर उनकी देखभाल का कितना बड़ा नैतिक दबाव होता है। ये मानवीय पहलू ही उनकी बातों को इतना असरदार बनाता है।
तो इस पूरी चर्चा से, बेन हॉरोविट्स की सोच और उनकी किताब से, अगर हमें तीन सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? तीन मुख्य निष्कर्ष।
हाँ बिल्कुल, तीन मुख्य बातें।
पहली क्या होगी?
पहली है भावनात्मक अंतर्दृष्टि, इमोशनल इनसाइट। लीडरशिप में जो अकेलापन महसूस होता है ना, वो कोई आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं है।
अच्छा तो वो क्या है?
वो उस जिम्मेदारी को उठाने का नतीजा है जहां आपके फैसलों का असर दूसरों की जिंदगी पर पड़ता है। इस मनोवैज्ञानिक बोझ को पहचानना, उसे स्वीकार करना और उसे मैनेज करने के तरीके खोजना, ये बहुत जरूरी है। ये जानना भी कि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, अपने आप में एक ताकत है।
ये बहुत गहरी और राहत देने वाली बात है। दूसरा निष्कर्ष क्या होगा?
दूसरा है बौद्धिक अंतर्दृष्टि। देखिए बिजनेस के मॉडल, स्ट्रैटेजी, बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब अपनी जगह ठीक हैं, मददगार हैं, लेकिन ये अक्ल, हिम्मत और सबसे बढ़कर अधूरी जानकारी के साथ फैसला लेने की काबिलियत की जगह नहीं ले सकते।
मतलब जब किताबी ज्ञान काम ना आए।
हाँ लीडरशिप का असली इम्तिहान तभी होता है जब सारे बने बनाए नियम फेल हो जाते हैं और आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। असली लीडरशिप वही है।
और तीसरा, जो शायद हम सबके लिए, हर किसी के लिए लागू हो,
तीसरा है सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, यूनिवर्सल इनसाइट। जिंदगी में जो भी चीजें वाकई मायने रखती हैं, जो भी सार्थक उपलब्धियां हैं, उन्हें पाने के रास्ते में अनिश्चितता, नाकामी और शक के दौर जरूर आते हैं। मुश्किलें मंजिल में रुकावट नहीं है।
तो वो क्या है?
वो कुछ सार्थक करने की कीमत है जो चुकानी पड़ती है। असली सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें क्यों आईं, असली सवाल ये है कि हम इन मुश्किल दौर से उभरने के लिए अपने अंदर वो ताकत, वो लगन, वो जुझारूपन कैसे पैदा करते हैं। ये बात सिर्फ बिजनेस पर नहीं, जिंदगी के हर मोर्चे पर लागू होती है।
बेन हॉरोविट्स की कहानी और उनके विचार में वाकई चुनौती देते हैं कि हम मुश्किलों को, अनिश्चितताओं को देखने का अपना नजरिया बदलें। क्या हम नाकामियों को सिर्फ ये सबूत मानने के बजाय कि हम गलत रास्ते पर हैं, उन्हें किसी भी सार्थक सफर का एक जरूरी, शायद एक अनिवार्य हिस्सा मान सकते हैं? ये सवाल सोचने लायक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।